जी मैम, जो मेरी
अभी।
आपसे बात हो गई थी मैम, ठीक हूँ अभी तो मैं वैसे फ्री हूँ,
हाँ जी
लेकिन आप जो बताया आपने मुझे उसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है
नहीं
वैसे।
सर, एक्चुअली वो तो मतलब हमारे जो मैम थे उन्होंने बताया आपको कुछ फीचर्स, जो मैं एक्चुअली पूरा थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना। एटलीस्ट आपको पता तो हो मार्केट में कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं, मे बी इन
पता क्या
फ्यूचर
मैम,
आप।
अगर आप वो बात कर रहे थे कुछ अटेंडेंस को लेके, आपका कुछ मतलब होता है, तो
सर
हम
वो
उस तरह का
तो
कोई केस करते ही नहीं है। और
सर अटेंडेंस तो उसका एक बहुत अलग सा पार्ट है। एक्चुअली तो जो हमारा फ्रेमवर्क है वो स्टूडेंट टीचर, जो स्टूडेंट टीचर का गैप होता है ना उसको आइडेंटिफाई करके ब्रिज करता है, और ये अटेंडेंस और फीस मैनेजमेंट तो उसके साथ एडिशनल फीचर्स हैं, वो आपकी चॉइस है। अगर आप नॉर्मली अटेंडेंस नहीं ले रहे हैं या जैसे भी आप कर रहे हैं, वो तो आपने देखना है कि मतलब हम तो आपको फीचर्स बताएंगे, फिर आप देखोगे कि आपके अकेडमी में वो कैसे फिट आते हैं, राइट।
चलिए बताइए
तो
बताइए
मेरा
मैम।
मतलब ये था कि एटलीस्ट यू शुड नो कि व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग,
या मैम बताइए,
ठीक है।
चलिए आप
तो
एक
जैसे
मिनट को।
तो एक्चुअली सर अगर आप कंफर्टेबल हो तो मैं गूगल मीट पे भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट या फिर मैं आपको बाद में वेबसाइट भेज दूंगी तो आप उस पर लिंक देख लेना जौन सा आप
जी,
कंफर्टेबल हो।
ठीक है मैम।
तो बेसिकली होता क्या है सर, जैसे एक आप भी ये प्रॉब्लम जनरली सभी टीचर्स फेस करते हैं, आप भी करते होंगे, कि जब हम एज अ टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो वी आर थिंकिंग कि सारे बच्चों को समझ आया, ठीक है।
जी,
उसके लिए कई बार हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, और क्लास में अगर सब बच्चे बैठे हैं कोई एक पर्टिकुलर बीच में से आंसर दे देता है, तो कई बार हम इजिली एक्चुअली आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि कौन से स्टूडेंट को समझ आया और कौन से को नहीं आया,
बिल्कुल बिल्कुल
राइट।
सही कह रहे हैं आप।
सेकेंडली क्या होता है कि जैसे अगर ऑन द स्पॉट तो चलो समझ आ गया, जो बेस्ट होता है वो ये होता है कि हमने क्लास में पढ़ाया, उसके बाद बच्चा घर जाके एटलीस्ट उस टॉपिक को रिवाइज करे, तभी नेक्स्ट डे की क्लास में कंटिन्यूटी बनेगी, ठीक है। और ये पार्ट काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर हम होमवर्क देते हैं और नेक्स्ट डे अगर हम होमवर्क चेक करते हैं तो उतना टाइम ही नहीं होता कि हम रोज रोज सारे होमवर्क सब बच्चों के
बिल्कुल
चेक कर
बिल्कुल
पाए,
सही कह रहे हैं।
ठीक है। तो उसमें अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट हो जाता है, चेक नहीं करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि किसने घर जाके रिवाइज किया किसने नहीं किया, ठीक है। मैं मानती हूँ कि एज ए टीचर अगर मुझे नेक्स्ट डे क्लास से पहले पता चल जाए ना कि कल जो मैंने पढ़ाया था उसमें से ये पर्टिकुलर एरिया है जो बच्चों का वीक रहा है, तो मैं नहीं मानती कोई भी टीचर ऐसा होगा जो उसको नहीं करवाएगा दोबारा,
बिल्कुल
ठीक है। और जब हम दोबारा करवाएंगे ना, जब नेक्स्ट टाइम वो हो रहा होगा, तो अब वो बच्चा भी अवेयर है कि उसको समझ नहीं आया, ठीक है। अब जब पढ़ाएंगे तो नेचुरली वो भी ध्यान से सुनेगा, और आप भी उसको, आपको भी पता होगा कि ये वीक रह गया था कल क्लास में ऑलमोस्ट क्लास का, तो आप उसको कवर कर सकते हैं। और अगर कोई
जी,
आपको कुछ बच्चे ऐसे दिखते हैं जो कि जिनको बिल्कुल भी नहीं आया था समझ, तो उनके लिए हम 10-15 मिनट्स की एक्स्ट्रा क्लास भी अरेंज करके वो टॉपिक को कवर कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारी पूरी की पूरी क्लास एक ही लेवल पे ग्रो करेगी, ठीक है।
बिल्कुल
तो वो जो ये हमारा बेसिकली जो फ्रेमवर्क है वो इसके लिए बना है। हमने क्या किया है कि 6 to 10th का जो मैथ साइंस इंग्लिश ग्रामर SST, इसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। जैसे कोई चैप्टर लेंदी है उसके 2 मॉड्यूल्स बना दिए, कोई चैप्टर और लेंदी है तो 3 भी बनाए हैं, और फिर हर एक मॉड्यूल में हमने छोटे छोटे पार्ट्स ब्रेक करके उनको हम कॉन्सेप्ट्स कहते हैं कि हमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में ब्रेक कर दिया। आप अभी जो भी मेथड फॉलो कर रहे हो आप उसी तरह से पढ़ाओ, पढ़ाने के बाद आपके टीचर को जस्ट इसमें मार्क करना है कि आज मैंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को हैंडल किया था क्लास में, ठीक है।
जी
तो क्या होगा कि उन्हीं कॉन्सेप्ट से बेस्ड एक MCQ पेपर बच्चे के ID में जनरेट हो जाएगा। अब ये MCQ पेपर इट इज अ सॉर्ट ऑफ होमवर्क, हम बच्चे को कह सकते हैं कि आपको ये घर से करके आना है, और नेक्स्ट डे क्लास से पहले आप अपनी लिस्ट ओपन करके देख सकते हो कि किस किस बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है।
नहीं, ये पॉसिबल कैसे होगा? मतलब आप मुझे कोई ऐप देंगे,
हाँ हमारी
उससे
वेबसाइट है
निकल
सर,
के आएगा?
हमारी
जी,
वेबसाइट है, उस पर आपका ID बनेगा, और उसमें फिर आपके स्टूडेंट जो है उनके ID बनेंगे।
क्या चार्ज होता है मैम उसका?
सर ये जो चार्जेस, तो अभी एक मिनट आप फीचर तो सुनिए पहले, चार्जेस भी
जी
डिस्कस कर लेंगे क्योंकि चार्जेस तो ऑब्वियसली होंगे, ठीक है ना।
बिल्कुल,
तो बेसिकली क्या है कि अब हमने अराउंड 7 लाख ऑफ क्वेश्चन है जो कि हमने सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ मैपिंग की हुई है। सपोज हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज आज हम टेंसेज की क्लास ले रहे हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट, दो तीन तरह के टेंसेज हमने क्लास में करा दिए, ठीक है। अब उन्हीं के बेस्ड एक पेपर बच्चे के ID में जनरेट हो गया। हमने एज ए अपने पेरेंट जो है उनको अवेयर करना है जी, आपके पास जब मैसेज आएगा, क्योंकि जैसे ही पेपर जनरेट होगा बच्चों के ID में, और एक मैसेज पेरेंट के पास पहुंच जाएगा जी पेपर आ गया, तो आपने इतना अवेयर करना है कि आज मैंने पेपर भेजा तो आपने ये अपने सामने अटेम्प्ट करवाना है। तो जब बच्चा सबमिट करेगा उसको पता चल जाएगा कितने ठीक हुए कितने गलत हुए, और आपके पास नेक्स्ट डे आप अपनी क्लास से पहले एक रिपोर्ट देख लो कि आपको पता चल जाएगा कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, और जिन्होंने जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया उनमें से कैसा रहा। सपोज एक पर्टिकुलर हम मान लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेस्ट ही सारों ने काफी बच्चों ने गलत किया, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में ले सकते हैं,
रिपीट कर भी सकते हैं।
हाँ 10 मिनट्स लगाएंगे हम, रिपीट कर लेंगे। अब हम जब रिपीट करेंगे तो सॉफ्टवेयर में फिर दोबारा मार्क कर देंगे कि आज हमने दोबारा पढ़ाया है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर फिर कुछ नए पेपर बच्चे के आईडी में, नए क्वेश्चन बच्चे के आईडी में भेज देगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता है, तो इसमें क्या होता है कि रेगुलरली आपके पास एक फीडबैक आता रहेगा कि एक तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है कि आपने किस दिन क्या क्या पढ़ाया, फिर किस कॉन्सेप्ट को आपने एक से ज्यादा बार पढ़ाया। सपोज आप एक्स्ट्रा टीचर्स भी हायर करते हो तो हर टीचर की भी पता चलेगी कि किस टीचर ने कौन सा कॉन्सेप्ट कितनी बार पढ़ाया, राइट। तो ये सारा आपके पास एक मैनेजमेंट हो रही है, जो कि अदरवाइज आप सोचो कि मैनुअली ये मेंटेन करना रिकॉर्ड, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। और यही जो रिपोर्ट है ये आप जब भी कभी पेरेंट को दिखाना चाहो आप पेरेंट को दिखा सकते हो। जैसे स्टूडेंट का आईडी बनता है साथ ही पेरेंट का भी आईडी बन जाता है, तो पेरेंट अगर आप उसमें ऑप्शन डालोगे तो पेरेंट उसको व्यू कर सकता है घर से कि किस दिन क्या क्या पढ़ाया गया है, ताकि ये ना हो कि कभी वो आके ये क्या मतलब ये हो जाता है जनरली जब बच्चे परफॉर्म नहीं करते हैं तो वो कहते हैं ट्यूशन टीचर ने पढ़ाया नहीं था, ठीक है। तो वो जब उनको रोज रेगुलर रिपोर्ट भी दिखेगी, उनको ये भी दिखेगा उनके बच्चों के कैसे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो काफी चीजें तो उनको पहले ही क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये तो हुआ ऑब्जेक्टिव पार्ट। फिर जब आपने उसका मॉड्यूल एंड हो गया, या इन बिटवीन भी आप हमारे इसमें सब्जेक्टिव पेपर भी कंडक्ट कर सकते हो, उसमें भी आपको पूरा क्वेश्चन पेपर मिलेगा। आप क्लास में जिस तरह से अभी करते हैं, चाहे आप बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख दें, चाहे आप प्रिंट आउट निकाल के दे दें, बच्चे जब उसको अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद आप चेक करोगे, चेक करके आप सॉफ्टवेयर में अपलोड कर सकते हो कि मेरे इस क्वेश्चन में बच्चे ने इतने मैंने मार्क्स दिए, और साथ में अपना रीजन लिख सकते हो कि क्यों कटे हैं मार्क्स। जब उसको सबमिट करोगे तो वो भी आपके पास पूरा एनालिसिस आएगा कि जो कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व थे उसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है जो इस स्टूडेंट का वीक है, राइट। सेकेंडली उसको हर क्वेश्चन का आपको भी मिल रहे हैं राइट आंसर्स, तो जब बच्चा को पेपर मिलेगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक तो पेरेंट के पास मैसेज पहुंच जाएगा कि पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पेरेंट अपने आईडी को ओपन करके देख सकता है। मतलब कल को ये नहीं होगा कि बच्चे ने घर जाके बताया नहीं पेपर मिल गया था, पेरेंट ने देखा नहीं, वो सारी प्रॉब्लम्स हमारी रिजोल्व हो जाएंगी, ठीक है ना। और जब पेरेंट को दिख गया और बच्चे को भी उस क्वेश्चन का अपने जो लिखा था वो भी दिख रहा है, जो राइट आंसर्स थे वो भी दिख रहे हैं, तो अब आपके लिए तो सोचो कितना इजी हो गया कि एक तो पेपर चेक हो गया, चेक होके मिल गया, अदरवाइज आपको क्लास में सबके राइट आंसर्स बताने पड़ेंगे तो भी टाइम लगेगा, ठीक है। एक एक आंसर डिक्टेट कराओगे उसमें काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा, उससे अच्छा है कि राइट आंसर्स वहां लिखे हुए आईडी में, बच्चे को हम कह सकते हैं कि आप देखो वहां पे लिखे हुए आ रहे हैं, वहां से आप चेक कर सकते हो। तो ये हमारा फ्रेमवर्क है जिससे कि हम स्टूडेंट और टीचर के बीच का जो गैप है ना हम उसको ब्रिज करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि 6 to 10th एक ऐसी एज है जिसमें बहुत सारे बच्चे, अगर ये गैप उनका इस टाइम पे ब्रिज हो जाएगा तो 11th 12th के बाद ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखा देंगे आगे जाके। और जैसे आपकी अकेडमी के स्टूडेंट्स अगर आगे जाके अच्छे करियर में जाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी अकेडमी की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई भी एजुकेशनल एकेडमी है वो तभी ग्रो करेगी अगर उसकी एकेडमिक एक्सलेंस होगी, बाकी चीजें सेकेंडरी है। अगर आपके पढ़ाए हुए बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे आ गए, उनकी नॉलेज अच्छी हो गई, आगे जाके करियर अच्छा ले लिया, तो आपकी एकेडमी का अपने आप ही वैल्यू डबल हो जाएगी, राइट। हाँ तो ये चीज हमने फ्रेमवर्क इसलिए बनाया है, और इसी फ्रेमवर्क इन्हीं आईडीज को हमने क्या किया है फीस से भी ज्वाइन कर दिया। जैसे जनरली क्या होता है अकेडमीज में जब बच्चे ज्यादा होते हैं, या अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते या हम मैन्युअली किसी करेंगे काम, तो कहीं ना कहीं कोई बच्चा छूट जाता है बीच में से, ठीक है। हम उसको रेगुलरली प्रॉम्प्ट तो कर रहे हैं फीस लाने के लिए, कभी वो नहीं लाया या नहीं, वो काफी टीडियस का टास्क हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने दो दो तीन तीन महीने फीस ही नहीं देते, आपके साथ भी मैं भी हो जाता होगा ऐसे। तो ऐसे बच्चों को जब हम आइडेंटिफाई करके बोलते हैं तो कई बार वो अकेडमी छोड़ भी जाते हैं, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव बच्चे हैं जो अकेडमी छोड़ के तो इसलिए गए कि उन्होंने फीस पे नहीं की, लेकिन आपके लिए तो वो यही कहेंगे ना कि अकेडमी अच्छी नहीं थी। तो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव जो स्प्रेड है वो बहुत फास्ट होता है, ये आप भी मानते होंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया हुआ, इन आईडीज को फीस के साथ लिंक कर सकते हो आप। आप जैसे मार्क कर दोगे कि इस बच्चे की आज सपोज हमारी 18th है या 19th को आज इसने ज्वाइन किया है, आपको लगता है कि इस डेट को फीस आनी चाहिए, वो एंट्री इसमें डाल दोगे, और आपकी चॉइस है कि कितने ग्रेस डेज देना चाहते हो. जैसे सपोज मैंने बोला 20th को फीस आनी चाहिए, बट मैक्सिमम 25th तक तो आई जानी चाहिए. या आप हर मंथ के लिए फिक्स कर सकते हो हर बच्चे का इंडिविजुअली. ठीक है, अब जब बच्चे की वो फीस आएगी, जब ड्यू होगी, तो उसके आईडी में पॉपअप एक मैसेज आने लग जाएगा कि आपकी फीस ड्यू होगी, काइंडली डिपॉजिट दी फीस. ठीक है, और साइमल्टेनियसली इसी में ही जो है आप जो टीचर क्लास में पढ़ाने जाएगा उसके पास भी अटेंडेंस वो मार्क करेगा अपने बैच की, तो उसमें भी जिन बच्चों की फीस ड्यू हुई है वो हाईलाइट होके आ जाएंगे. जैसे नॉर्मल तो सारे बच्चों के नाम आ रहे हैं, लेकिन ब्लू कलर से हाईलाइट हो जाएंगे वो बच्चे जिनकी फीस ड्यू हो रही है. तो बच्चा टीचर वहीं आइडेंटिफाई करके उनको कह सकता है. या अगर आप अलग से भी किसी बंदे किसी को हायर किया हुआ है जो फीस को मैनेज कर रहा है, तो वो अटेंडेंस में से देख सकता है कि इसकी फीस ड्यू हो गई है, तो उस बच्चे को आइडेंटिफाई करके कहा जा सकता है या कॉल भी की जा सकती है. वैसे तो फोन मैसेज तो जा ही रहा है. ठीक है, और जो आपने ग्रेस डेज दिया अगर उस दौरान भी फीस नहीं आएगी, तो जब आपके लास्ट सपोज आपने माना 25th तक आनी चाहिए थी, 25th तक भी नहीं आई, अब क्या होगा, अब उस स्टूडेंट का आईडी लॉक हो जाएगा. लॉक होने से क्या होगा कि अगर आपने पेपर भेजा है तो वो भी अटेम्प्ट नहीं कर सकता, कोई एनालिसिस देखना चाहता है तो वो भी नहीं देख पाएगा. ठीक है, और आपके पास वो लिस्ट में अब रेड कलर से हाईलाइट हो जाएगा, ताकि वहीं से आप आइडेंटिफाई कर लो कि भी इसका तो लॉगिन भी लॉक हो गया लेकिन फीस नहीं आई है. ठीक है, तो आप कॉरेस्पॉन्डिंगली जो भी एक्शन लेना चाहते हैं ले लेंगे, तो आपकी अकेडमी की जो फीस की स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वहां पे आ जाएगी. राइट सर, और सेकेंडली कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो इस वजह से सेंटर छोड़ के जाएगा कि उन बच्चों की फीस नहीं आई थी तो उन्होंने छोड़ दिया. ठीक है, तो जो नेगेटिव स्प्रेड है वो भी बंद हो जाएगा. तो ऐसे आपके अकेडमी को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल सकती है इसकी हेल्प से. राइट, और जैसे ही आप अटेंडेंस इसमें मार्क करेंगे, जो बच्चा नहीं आया था उसकी एबसेंट मार्क होगी, और वहीं से मैसेज भी चला जाएगा पेरेंट के पास कि आज आपका स्टूडेंट पहुंचा नहीं है एकेडमी. तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं खत्म हो जाएगी कि कल को पेरेंट आके ये नहीं कह सकता जी वो तो आया था. तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं. इसके अलावा रेगुलर टेस्ट हैं, सारे जो सब्जेक्टिव पेपर हैं, फिर हम लोग इसमें रिवीजन टेस्ट भी बनाते हैं जिसको हम HLTs और FLTs हैं, वो भी कंडक्ट कर सकते हैं. मतलब जैसे 2-3 चैप्टर्स को मिक्स करके पेपर बनवा लिया, 1.5 आवर का कंडक्ट कर लिया, और हर पेपर की आपको आंसर की भी मिल रही है, हर पेपर का आपको एनालिसिस भी मिल रहा है. ठीक है, तो इस तरह का फ्रेमवर्क है जिससे कि बच्चों की एक तो एकेडमिक ग्रोथ हो जाएगी, और एकेडमिक ग्रोथ होने से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रोथ तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगी. राइट, और साथ साथ आप जितना स्टाफ है स्टाफ की अटेंडेंस भी इसमें लगा सकते हो. स्टाफ का फीडबैक रिपोर्ट आपको दिखता रहेगा कि किस स्टाफ की ज्यादातर वीक एरियाज निकल के आ रहे हैं, किसके नहीं, ताकि कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन राइट टाइम पे हो जाए. अदरवाइज क्या होता है कि अराउंड 1 मंथ आपने हफ्ते बाद टेस्ट लिया, उस टेस्ट में मार्क्स नहीं आए. अब मार्क्स जब तक आए 10-12 दिन निकल गए. इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, एक ही बैच होता है उसमें कुछ बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं होते, और ऐसे बैच को हैंडल करने में टीचर को बहुत मुश्किल होती है. राइट, अगर ये राइट टाइम पे आइडेंटिफाई हो जाए कि ये 2 बच्चे पीछे चल रहे हैं, उनकी हमने एक एक्स्ट्रा क्लास या 2 एक्स्ट्रा क्लासेस ऑर्गेनाइज कर दी, उसके साथ ही धीरे धीरे वो अपने आप ही ब्रिज होकर गैप ब्रिज हो जाते हैं और बच्चे सब एक ही लेवल पे आ जाते हैं. और हमारा तो यही एक्सपीरियंस रहा है. इवन जो हमारे पार्टनर्स हैं वो भी इस चीज को कहते हैं कि ये फ्रेमवर्क से उनकी भी अकेडमी में बहुत अच्छा बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है. तो मैं इसलिए हम कॉल कर रहे थे कि अगर आप चाहो तो हम आपका 15 डेज के लिए एक फ्री ट्रायल है इसमें, वो आप कर सकते हो. आप फिर देख सकते हो फीचर्स, जहां आपको लगता है आपकी एकेडमी में ये सूट करेगा उसके अकॉर्डिंग आप आगे प्लान कर सकते हो.
ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा?
उसमें सर ये है कि आपका हम आईडी डिटेल्स आपसे लेंगे और आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा. इसके फिर उसके बाद आप हमें स्टूडेंट्स की वो फिर हम जो है स्टूडेंट्स आप उनके लिए आईडी बना देंगे, तो साथ साथ कॉरेस्पॉन्डिंग उनके पेरेंट के आईडी बन जाएंगे. अराउंड 1 वीक की आपकी ट्रेनिंग होगी, 2-3 सेशंस होंगे ट्रेनिंग में, जिसमें हम आपको बता देंगे कि कैसे कैसे इसको ऑपरेट करना है. तो आप इसको यूज करके देख सकते हो. 15-20 डेज तो आप फ्री ट्रायल है, आप इसको यूज करिए, फिर आप डिसाइड करना. हाँ जी,
उसके बाद
जो है फिर ये आपका पेड होगा. उसमें हमारे जो पेमेंट का मेथड रहता है उसमें 100 रुपीज पर स्टूडेंट है पर मंथ.
बिल्कुल,
जिसमें कि सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, सारे पेपर्स अवेलेबल हैं, सब्जेक्टिव पेपर भी हैं, ऑब्जेक्टिव भी हैं, और सारी ही एक तरह से मैनेजमेंट है पूरी.
ओके,
तो पर पहले तो 15 डेज की ट्रायल ही लीजिए ना, ताकि आप देखें फीचर्स कौन कौन से हैं, फिर आप देख पा सोच पाएंगे कि आपके एकेडमी में इनमें से कौन से आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। क्योंकि जितना इन ये मैनेजमेंट आपकी अगर सॉफ्टवेयर कर देगा तो उतना ही आपके लिए इजी हो जाएगा, आप अपने एकेडमिक्स पे और फोकस कर पाओगे, राइट?
ठीक है मैम।
तो इसलिए ये फ्रेमवर्क था। और इसमें बहुत और एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, जैसे आप इसमें पीटीएम कंडक्ट कर सकते हो, आपने कोई स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करना है, ऐसे बहुत अलग अलग फीचर्स अवेलेबल है और वो सारे आपको हम बताएंगे फिर जॉन से। आपको उसमें से मतलब मेरा ये मानना है कि फीचर्स सारे पता होने चाहिए, फिर आप एज ए पर्सन डिसाइड करोगे कि आपकी अकेडमी में कौन से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं या कौन से करके आपको बेनिफिट मिल सकता है।
ठीक है मैम, चलिए कोई नहीं, मैं एक बार आपसे बात कर लूँ अपने पार्टनर से भी।
हाँ, मैं तो ये चाहूंगी सर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के, जैसे आपके पार्टनर और आप दोनों आ जाओ गूगल मीट पे, हम आपको अपना फ्रेमवर्क दिखा दें, तो आप दोनों बहुत अच्छा डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि वर्बली बोलना और एक फ्रेमवर्क देखना, इन दोनों में फर्क होता है,
थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल में फर्क है
ऑब्वियसली।
तो बस बात कर लूँ एक बार, फिर डिसीजन लेते हैं दोनों।
हाँ, 10-15 मिनट्स की ना, मतलब एक बार इतना टाइम देना कि दोनों पार्टनर्स उस पे फ्रेमवर्क पे आके एक बार देखो कि है क्या, चाहे आईडी भी मत क्रिएट करवाना, बट एटलीस्ट आपको फ्रेमवर्क का तो आइडिया हो कि हमारा फ्रेमवर्क क्या प्रोवाइड
करता है। जानने में तो कोई प्रॉब्लम
हाँ,
नहीं है,
क्योंकि सर
आपने जो 15 डेज का ट्रायल दिया उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी
हाँ जी
आपको अच्छा लगे तो रख सकते हैं, नहीं
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाकी उस तरह से हमारी कोई वो नहीं है कि हम कोई इसमें आपको कोई फोर्स कर रहे हैं या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारा तो एथिकल वर्क ही है और हम चाहते हैं कि हम एक्चुअली वी आर इन द सर्च ऑफ एथिकल पार्टनर्स, जो कि एक्चुअली टीचिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं बच्चों की।
बिल्कुल बिल्कुल
राइट, क्योंकि ये जो एज होती है इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बोलते नहीं है, जिसकी वजह से वीक रह जाते हैं और वो फिर उनकी 11th-12th भी रिफ्लेक्ट होती है, वो भी अच्छी नहीं जाती है। और ये एज में अगर एक बार स्टडीज में आगे बचे तो करियर भी बहुत अच्छा बना जाते हैं।
बिल्कुल, ये तो बेस है।
हाँ बिल्कुल, और इस बेस को बनाने में ट्यूशन टीचर ही सपोर्ट दे सकता है बच्चे को, क्योंकि बच्चा खुद नहीं, ये तो सर एक तरह से वही है कि डॉक्टर अगर टेस्ट करा के रिपोर्ट देख के उसके हिसाब से दवाई देगा तो बच्चे के मतलब पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। तो वही हमने रखा है कि टीचर टेस्ट लेके देख ले कि समझ नहीं आया तो चलो मैं ही दोबारा पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे करने से एक पॉजिटिव ग्रोथ होती है स्टूडेंट में।
सही कह रहे
हैं, अदरवाइज क्या होता है सर, हमने टेस्ट लिया, मार्क्स कम आ गए, हमने लिस्ट लगा दी, वो नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा जाता है बच्चे पे, ऐसे बहुत पॉजिटिव जाता है। क्योंकि उसको अब ये नहीं होता कि मेरी को किसी को पता चल रहा है मेरे कितने आए, टीचर के तो पता चल ही गया, टीचर उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉपरली फिर से समझा देंगे तो बच्चे अपने आप ही इम्प्रूव करने लग जाते हैं और स्टडीज में इंटरेस्ट बन जाता
है। मैम आपने सही बताया, बिल्कुल मैं एक बार डिस्कस कर लूँ, फिर आपसे कॉन्टेक्ट कर लूंगा।
तो मैं कल इस टाइम बात कर लूँ आपसे?
बिल्कुल मैम।
चलो ठीक है सर, कल फिर 8:15 ही मैं आपसे फिर दोबारा कॉल कर लूंगा।
ओके
ओके सर, थैंक यू सो मच।
ओके वेलकम।